नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट वर्ल्ड्स ग्रेट लिटरेचर में। मैं हूं आपका कहानी वाला लड़का सिद्धांत। इस पॉडकास्ट में आप सुनते हैं दुनिया भर के महान राइटर्स की कल्पना और कलम से निकले कुछ खूबसूरत, रोचक, रोमांचक, कभी दिल को छूने वाली तो कभी सिरहन पैदा करने वाली अमर कहानियां और हल्का सा राबता राइटर के साथ में। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे आज के पिटारे में। मैं आज इस भारतीय लेखक की कहानी लाया हूँ। उनका नाम मॉडर्न उर्दू फिक्शन में बड़े नाज के साथ लिया जाता है। ये मॉडर्न उर्दू साहित्य के चार स्तंभों में से एक हैं। ये हैं राजेंद्र सिंह बेदी। अब आप पूछेंगे कि एक पिलर या स्तंभ बेदी है तो बाकी के तीन कौन हैं? तो बाकी के तीन हैं इसमत चुगताई, सादत हसन मंटो और कृष्णचंद्र, जिसमें से मैं आपको मंटो की कहानी पहले सुना चुका हूँ। अगर आपने नहीं सुनी है तो इस एपिसोड के बाद सुन लीजिएगा, और बाकी दो की कहानी मैं आने वाले कुछ एपिसोड में सुनाने वाला हूँ। बहरहाल हम वापस आते हैं राजेंद्र सिंह बेदी जी पर। बेदी जी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। उनके पिता हीरा सिंह लाहौर के सदर बाजार डाकखाने में पोस्टमास्टर थे। बेदी की आरंभिक शिक्षा लाहौर छावनी के स्कूल में हुई थी, जहाँ से उन्होंने चौथी जमात पास की। इसके बाद उनका दाखिला SBBS खालसा स्कूल में करा दिया गया। उन्होंने वहां से 1931 में फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक के बाद वो DAV कॉलेज लाहौर गए, लेकिन इंटरमीडिएट तक ही पहुंचे थे कि माता का देहांत हो गया। माँ के देहांत के बाद उनके पिता ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 1933 में बेदी को कॉलेज से उठाकर डाक खाने में भर्ती करा दिया। उनकी तनख्वाह 46 रुपये मासिक थी। 1934 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। खालसा कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। डाकखाने की नौकरी के ज़माने में वो रेडियो के लिए भी लिखते थे। 1946 में उनकी कहानियों का पहला संग्रह दाना ओ दाम प्रकाशित हुआ और उनकी अहमियत को साहित्यिक मंडलियों में स्वीकार किया जाने लगा, और वो लाहौर से प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका अदब लतीफ के अवैतनिक संपादक बन गए। 1943 में उन्होंने डाकखाने की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2 साल इधर उधर धक्के खाने के बाद उन्होंने लाहौर रेडियो के लिए ड्रामे लिखने शुरू किए। फिर 1943 से 1944 तक लाहौर रेडियो स्टेशन पर स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी की, जहां उनकी तनख्वाह 150 रुपये थी। फिर जब युद्ध प्रसारण के लिए उनको सूबा सरहद के रेडियो पर भेजा गया तो उनकी तनख्वाह 500 रुपये हो गई। बेदी ने वहाँ 1 साल काम किया, फिर नौकरी छोड़कर लाहौर वापस आ गए और लाहौर की फिल्म कंपनी महेश्वरी में 600 रुपये मासिक की नौकरी कर ली। ये नौकरी भी रास नहीं आई और उन्होंने 1946 में अपना संगम पब्लिशिंग हाउस स्थापित किया। 1947 में देश का विभाजन हो गया तो बेदी को लाहौर छोड़ना पड़ा। वो कुछ दिन तो रोपड़ और शिमला में रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से हुई, जिन्होंने उनको जम्मू रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। वहाँ भी उनकी लोगों के साथ नहीं निभी और वो बम्बई आ गए। बम्बई में उनकी मुलाकात फेमस पिक्चर कंपनी के प्रोड्यूसर DD कश्यप से हुई, जो उनसे परोक्ष रूप से परिचित थे। कश्यप ने उनको 1000 रुपये मासिक पर मुलाजिम रख दिया। बेदी ने अनुबंध में शर्त रखी थी कि वो बाहर भी काम करेंगे। कश्यप के लिए बेदी ने 2 फिल्में बड़ी बहन और आराम लिखी और बाहर दाग लिखी। दाग बहुत चली, जिसके बाद बेदी तरक्की की मंजिलें तय करने लगी। उनकी कहानियों का दूसरा संग्रह ग्रहण 1942 में ही प्रकाशित हो चुका था। 1949 में उन्होंने अपना तीसरा संग्रह कोक जली प्रकाशित कराया। बेदी स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के रूप में जिन जिन फिल्मों का हिस्सा रहे उनमें थी बहन, दाग, मिर्जा गालिब, देवदास, गर्मकोट, मिलाप, बसंत बिहार, मुसाफिर, मधुमती, मेम दीदी, आज का पंछी और भी जाने कितनी। 1956 में उन्हें गर्म कोट के लिए बेहतरीन कहानी का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। दूसरा फिल्मफेयर अवार्ड उनको मधुमती के बेहतरीन संवादों के लिए और फिर 1971 में सत्यकाम के संवाद के लिए दिया गया। 2006 में नीना गुप्ता ने उनकी कहानी लाजवंती पर टैली फिल्म बनाई। 1965 में उनको एक चादर मैरी सी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। इसके बाद 1978 में उनको ड्रामा के लिए गालिब अवार्ड से नवाजा गया। उनकी याद में पंजाब सरकार ने उर्दू अदब का राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड शुरू किया है। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी एक मार्मिक कहानी। भोला। मैंने माया को पत्थर के कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछी खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेबा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाई के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यही यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है, उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा,
बाबा परसों मामूजी आएंगे ना।
मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत ही नर्म और नाजुक था और उसकी आवाज बहुत सुरीली, जैसे कवल की पत्तियों की नजाकत और सफेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुशहलानी को इकट्ठा कर दिया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत ना देता था, ताहम मैंने जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मुहर सत कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामूजी तेरे माताजी ये क्या होते हैं? भोले ने कुछ वक्त के बाद जवाब दिया,
मामूजी।
माया ने स्रोत पढ़ना छोड़ दिया और हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने 12 माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, हरी हर हरी हर हरी हर हरी, मेरी बार क्यों इतनी देर करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा,
भोले तुम नन्नी के क्या होते हो?
भाई, भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामूजी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मखमसे में पढ़ने की कोशिश न की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्मा सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर जोहड़ के किनारे फैली हुई धूप की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्माओं पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मजारुओं को हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ, जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सिर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कब्र तोड़ दी है। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। जरा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैं अपनी बहू की सादतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बिटिया। भोला अभी तक सोया ना था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला,
बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या?
नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा,
मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तो मैं सुनाऊंगा।
भोले ने रूठते हुए जवाब दिया,
मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ।
भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं, मगर उस दिन हलों का कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं उतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता, पर इस वजह से मेरे पाँव में टीसे ना उठती। इस गैर मामूली थकन के बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम सा होने लगा। मैं ऊँगते ऊँगते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरज गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला,
मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा।
क्यों भोले?
भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है।
मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना किया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्नी टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लपेटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरिहर स्त्रोत पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया। मैं भाई बहन के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों में आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है कि माँ बाप, भाई बहन, खाविंद बच्चे सबसे वो बहुत ही प्यार करती है, और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपने दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला,
बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना?
किस बात का बेटा?
तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है।
हाँ बेटा जी, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनाचे वक्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की सी जरीब थी। उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दलान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायती में पांव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का मुझे इसरार से जल रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवज्जो करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया ही का बेटा है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानका वाले कुएं को चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जैसे गुज़िश्ता शब को आसमान के कोने में मशाल की मानित रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआ कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ओह, मैंने जेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा,
बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी।
भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं।
रास्ता भूल जाते हैं?
भोले ने सोचते हुए कहा,
बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता।
अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायती पर रखी और अपनी दबी हुई एड़ी को जूते की कैद से बामशक्कत निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त सात शहजादों और सात शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा से उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो एक अफसुरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले, मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गो माया ने ज्योति को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलक ना हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दलाल से सेहन में और सेहन से दलाल में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे, मामू जी कल्लू लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती नहीं बाबा। और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी के अल्फाज सात शहजादों और सात शहजादियों वाली कहानी के बयान में उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआएं देते हुए कहा, बहुत जहीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपनी मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियो को दिया सलाई दिखाई गई। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियो की रोशनी ज्यादा होती जाती। मुतफकिराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफकिराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नरमो नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्नी के हो? भाई तुम जानो। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें और अपने पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर इसे रेटिंग ज़रूर कर दें, जिससे मुझे पता लग सके कि कितने लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है। मैं आपका कहानी वाला लड़का मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।